तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद् भगवद् गीता के आत्मसंयम योग नामक छठे अध्याय के 37 से लेकर 35 श्लोक पर्यंत योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन के द्वारा की गई शंका और भगवान के द्वारा दिए गए उत्तर का विचार हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा योग भ्रष्ट के गति के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, योग भ्रष्ट का इह और अमूत्र, इहलोक और परलोक में विनाश नहीं होता है। जैसे तुमने छिन्न अभ्रम का दृष्टांत दिया था और छिन्न अभ्रम जैसे नष्ट हो जाता है, इस प्रकार ये योग भ्रष्ट जो है उसका विनाश नहीं होगा। विनाश क्यों नहीं होगा? तो भगवान ने कहा कि वो कल्याण कृत है। इसलिए सामान्य रूप से भगवान ने कहा कि जो कल्याण कृत होता है उसका जन्म नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो ये जो तुमने प्रश्न पूछा है वो तो सर्वोत्कृष्ट है, केवल शास्त्रभित कार्य है उतना ही, वो तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यदि कल्याण कृत यानी थोड़ा बहुत भी शास्त्रभित आचरण किया हो, पुण्याचरण किया हो, तो उसका भी विनाश नहीं होता है। तो फिर जिसके विषय में तुमने शंका की है वो तो संन्यास के उत्तर वेदांत का श्रवण मनन करते हुए अल्पायु के कारण जिसका शरीर छूट गया, तो उसकी तो दुर्गति न हो उसमें तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान ने ये कहा। तो अर्जुन ने फिर कहा कि नाशाभावे किम भवति। ठीक है भगवान, जैसे कि आपने कहा कि उसका नाश नहीं होता है, तो फिर किम भवति, क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि यदि वो पूर्व जन्म या इह जन्म में जो उपचित भोग की वासना के प्रादुर्भाव से मृत्यु के समय उसके मन में विषयों के प्रति स्पृहा थी, स्पृहावान यदि वो होता, तो वो शरीर छूटने के बाद पुण्य कार्य के लोक में वो अर्ची मार्ग से उसका गमन होगा, ब्रह्मलोक में उसका गमन होगा, और उस ब्रह्मलोक में वो शाश्वती ही समा उषित्वा। शाश्वती यानी जो है मनुष्य के संवत्सर की अपेक्षा वो अनंत काल तक वो संवत्सर विस्तृत होने से ब्रह्मा जी के संवत्सर के लिए शाश्वती शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ब्रह्मा जी के कई एक संवत्सर तक वो ब्रह्मलोक में वो जो उसके मन में विषयों के प्रति जो स्पृहा रह गई थी उस स्पृहा के अनुरूप वो ब्रह्मलोक के भोगों को भोगेगा और फिर वो भोग जो है वो तो नाशवंत है, चाहे इहलोक के हो या परलोक के हो, उसका नाश अवश्यंभावी। भोग भोगते समय जब उस भोग समाप्त हो गए, कहीं एक संवत्सर तक वो ब्रह्मलोक में रहा, तो फिर भोग भोगा है, विषयों में स्पृहा थी, उसी के फल स्वरूप वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ब्रह्मलोक में भी उन्होंने ब्रह्मा जी के कई एक संवत्सर तक भोग भोगा, इसलिए भोग की वासना का प्राबल्य संभव है। इसलिए जब ब्रह्मलोक का अंत हो गया, तब जो है उसका पुनः इस मनुष्य लोक में जन्म होगा, और वो किसके घर में जन्म होगा, तो भगवान ने कहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। ब्रह्मलोक के अनंतर हे अर्जुन, तुमने जिस योग भ्रष्ट के विषय में जो शंका की है, वो योग भ्रष्ट फिर शुचिनाम श्रीमताम गेहे ऐसे गृहस्थी के घर उसका जन्म होगा जो इन दो विशेषणों से युक्त है, एक तो शुचि है और श्रीमान है। शुचि का अर्थ है व्यवहार से, आचरण से जो शुद्ध है, श्री यानी ऐश्वर्य से जो संपन्न है, ऐसे गृहस्थी के घर में ये योग भ्रष्ट अभिजायते यानी कि जन्म धारण करता है। इसलिए श्रीमान होने के साथ साथ शुद्धि भी हो। वर्तमान काल में हालत यह है कि श्रीमान तो होते हैं किंतु शुचि नहीं होते, और शुचि से अभिप्राय केवल शुद्ध ही नहीं लेना है, शुचि से अभिप्राय है कि धर्मानुकूल व्यवहार भी हो। प्रायः ये दोनों इकट्ठे कम होते हैं, और इससे एक बात ये भी सिद्ध हो जाती है कि कई एक लोग कहते हैं कि विभूति के साथ धर्माचरण कम देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों संभव है, तभी भगवान ने ऐसा कहा है। और हमारे यहां जो है पुराणों में आप जो कथा सुनते हैं, बड़े बड़े राजा थे, अजातशत्रु, जनकादि वगैरह, चक्रवर्ती महाराजा थे, लेकिन उन्होंने कभी धर्माचरण नहीं छोड़ा। और आज हालत यह है कि थोड़ा धंधा बढ़ जाता है तो कहते हैं गलत तो करना ही पड़ता है, स्वामी जी कहते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो अधर्म धर्म को बेच करके अधर्म को खरीदने जैसा हो गया है। तो इसलिए शुचि का अर्थ है जो गृहस्थाश्रम की जो धर्म है वो धर्म परायण भी हो, गृहस्थाश्रम में करने योग्य कर्म जो बखूबी निभा रहे हैं। और इसलिए वो श्रीमान है। आप ये मत सोच करके रखिए कि अधर्माचरण का फल श्री की प्राप्ति है, ऐसा नहीं है। यदि श्रीमान भी होना है, श्री से संपन्न भी होना है, तो भी धर्माचरण चाहिए। धर्माचरण के बिना श्री की प्राप्ति भी संभव नहीं है। श्री यानी लक्ष्मी, विभूति, ऐश्वर्य, जो भी कहा है वो। और हमारे यहां तो ये कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात धनम आपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। कहा कि पहले तो मनुष्य विद्या को प्राप्त करे और विद्या से तुरंत लाभ होता है विनय की प्राप्ति। विनय यानी नम्र भाव, अकड़ाई का अभाव। विनयात याति पात्रता, और उससे ही जो है पात्रता, योग्यता आती है। और योग्य को ही धन की प्राप्ति होती है, पात्रत्वाद धन आपनोति। धन भी उसी का वर्णन करता है जो योग्य हो। ये नहीं कि प्राप्त होने के बाद उच्छृंखल हो जाए और धन समाप्त हो जाए। उच्छृंखल व्यक्ति के पास धन टिक ही नहीं सकता है, आ भी गया तो जल्दी समाप्त हो जाता है। और धन भी किस लिए है? धर्मानुष्ठान के लिए, क्योंकि धर्मानुष्ठान के लिए धन की आवश्यकता रहती है। धर्मानुष्ठान से गृहस्थ आश्रम में करने योग्य जो है कर्म, जैसे याग ही ले लीजिए, याग करना है तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें कई एक व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती है। और अपार धन की भी आवश्यकता पड़ती है, कई एक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन के बिना संभव नहीं है। इसलिए धन से धर्म संभव है। धन की प्राप्ति धर्मानुष्ठान के लिए है, भोग के लिए नहीं है। भोग से तो धन कम होगा। धन को यदि आप भोग का साधन मानेंगे तो भोग करोगे तो धन कम होगा। और कहोगे कि धन धर्म के लिए है और धन से धर्मानुष्ठान किया जाए तो धन बढ़ेगा। और धर्म होने पर ही सुख प्राप्ति संभव हो जाती है। सुख की प्राप्ति में कारण धन है, किंतु साक्षात नहीं, बीच में धर्म को उत्पन्न करके। धन से सीधा सुख नहीं होता, धन से धर्मानुष्ठान और धर्मानुष्ठान से सुख होता है। व्यक्ति को चाहिए सुख, जब सुख की बात आती है तो धन से भी व्यक्ति सुख को ज्यादा महत्व देता है। धन का स्रोत चाहे कितना भी बड़ा हो, 24 घंटा काम चल रहा हो, लेकिन कोई 24 घंटा थोड़ा नहीं ऑफिस में बैठा रहता है, 24 घंटा थोड़ा ना कार्यालय या फैक्ट्री में निगरानी करके बैठा रहता है। आराम तो करना ही पड़ता है सबको छोड़ करके। इसलिए महत्व तो सुख का ही है, किंतु ये जो सुख है उसकी प्राप्ति के साधन में मनुष्य भ्रांत हो जाता है कि सुख पापा अधर्माचरण से मिलता है या धर्माचरण से मिलता है, उसमें भ्रांत हो जाता है। इसलिए अधर्म का रास्ता वो जो है वरण कर लेता है और उससे वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि अधर्म का फल कभी सुख नहीं हो सकता, धर्म का ही फल सुख है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि धन से धर्म का संग्रह करे और तब सुख होए। इसलिए श्रीमान के साथ शुचित्व, इसलिए भगवान ने कहा श्रीमान भी हो और शुचि भी हो। शुचि यानी या शुद्ध मार्ग से धनार्जन किया हो। धनार्जन तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जैसे अभी कहा कि गलत रास्ते से वो धन अर्जन करता है, तो वो जो धन है उससे धर्म नहीं होता है, उससे वो जो है और भोग करता है और पापाचरण करता है। धनार्जन तो दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है उस धन से धर्माचरण। इसलिए भगवान ने कहा कि शुचिनाम श्रीमताम, पवित्र धर्माचरण करने वाला और उसी के फलस्वरूप जो श्रीमान हो, विभूतिमान हो, महाराज चक्रवर्ती के गेह यानी उसके कुल में योग भ्रष्ट अभिजायते। क्यों ऐसा? इसलिए कि वो जो योग भ्रष्ट है वो उसकी पूर्व उपचित भोग की वासना का प्रादुर्भाव के कारण उसकी वृत्ति भोग में हो गई थी। इसलिए भोग वासना जो है ब्रह्मलोक में भोग भोगने के कारण भोग की वासना शेष रह गई है, इसलिए उसके सद्भाव से वो जब अगला जन्म भगवान ने कहा कि वो शुचि और श्रीमान के घर में उसका योग भ्रष्ट का जन्म बताया भगवान ने, या ब्रह्मलोक में भी भोग भोगा है तो वहां भी भोग वासना की प्रबलता के कारण ब्रह्मलोक के अंत में वो महाराजा के घर में या महाराजा खुद होता, वहां तुरंत सर्वकर्म का संन्यास संभव नहीं है, उसके घर में जन्म होता है। और भगवान ने यहां पर दो पक्ष किए हैं योग भ्रष्ट के। एक तो योग भ्रष्ट वो है कि उन्होंने साधन तो किया, वेदांत श्रवण आदि संन्यास आदि सब साधन किया, लेकिन भोग में इच्छा थी तो उसका ये पक्ष बताया। अब श्रद्धा वैराग्य आदि जो कल्याणकारी जो गुण है वो अधिक होने पर, यदि योग भ्रष्ट के अंदर श्रद्धा वैराग्य आदि जो कल्याणकारी गुण अधिक है, वैराग्य प्रबल है, भोग के अंदर बिल्कुल स्पृहा नहीं है, तो ऐसे जो योग भ्रष्ट है कि अल्पायु के कारण ही जिसका शरीर छूट गया, श्रद्धा वैराग्य आदि वो जैसा शास्त्र में बताया है वैसा ही होने पर भी अल्पायु के कारण शरीर छूट गया था जिसका, तो इस प्रकार का जो योग भ्रष्ट है उसके लिए भगवान ने पक्षांतर किया है, उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्। अथवा करके भगवान ने विकल्प किया है, अथवा से यदि अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, जिस योग भ्रष्ट के विषय में तुमने पूछा है वो योग भ्रष्ट यदि श्रद्धा वैराग्य आदि तीव्र वैराग्य आदि कल्याणकारी गुण से यदि वो संपन्न था तो उसके मन में शरीर छूटते समय भोग वासना नहीं थी, भोग वासना से वो रहित था और शरीर छूट गया तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं होगा, वो पुण्यकारी लोक को प्राप्त नहीं होगा। पुण्यकारी लोक, भगवान ने पुण्यकारी लोक की प्राप्ति इसलिए बताई कि वो भोग वासना थी, इसलिए अब तीव्रतर वैराग्य के कारण भोग वासना नहीं है और शरीर छूट गया तो भगवान कहते हैं कि वो पुण्यकृत यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त न करके शरीर छूटते ही सीधे वो योगी नाम कुले भवती, ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं होगा वो, क्योंकि तीव्रतर वैराग्य है। इसलिए योगी नाम एव कुले भवती, उसका जो है पुनः योगियों के कुल में जन्म होगा। योगी शब्द का अर्थ है यहां पर जो श्रीमान नहीं है किंतु बुद्धिमान है। भगवान ने आगे एक विशेषण का प्रयोग किया है धीमताम, और शुचिनाम जो शब्द है वो पिछले श्लोक से यहां पर भी ले आइए। तो यहां पर भगवान ने कहा कि योगी नाम एव कुले भवति, योगी के कुल में, योगी से अभिप्राय है जो धीमताम यानी ब्रह्म ज्ञान से जो संपन्न है उसके कुल में, ब्रह्म विद्या से जो संपन्न है उसके कर्म में उसका जन्म होगा। और शुचि नाम विशेषण भी ले आइए, शुचि नाम यानी जो शुद्धता से संपन्न है, धर्माचरण से संपन्न है, और धीमताम यानी कि ब्रह्म विद्या से भी संपन्न है, श्रीमान नहीं है किंतु धीमान है। पूर्व में भगवान ने शुचिनाम श्रीमताम कहा, अब यहां लगा लीजिए शुचिनाम धीमताम, योगी नाम आचरण शुद्ध भी है, और जिन्होंने धन की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, विद्या को महत्व दिया। देखिए आज लोक में हम देखते हैं कि एक विवाद अनंत काल से चला आ रहा है, धन श्रेष्ठ है कि विद्या श्रेष्ठ है, तो अधिकतर व्यक्ति यही कहेंगे कि धन श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति विद्या भी प्राप्त करता है। आजकल की जो विद्या है उस विद्या का उद्देश्य तो धनार्जन है, इसलिए कोई भी पढ़ता है आज की जो आधुनिक विद्या का अध्ययन करता है तो उसको पूछो कि तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं पढ़ करके बहुत ही धन प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने विद्या को भी धन का साधन मान रखा, और वो ठीक है क्योंकि उनकी जो विद्या है उस विद्या की ये सीमा है कि वो धन ही प्राप्त करा सकती है, इससे अतिरिक्त ऐहिक सुख परलोक और मोक्ष प्राप्त कराने में वर्तमान विद्या समर्थ नहीं है। और यहाँ पर धीमताम का अर्थ है विद्यावताम, जो विद्यावान है, और विद्या से आप दोनों प्रकार के विद्या ग्रहण कर लीजिए। हमारे शास्त्र में तो दो प्रकार की विद्या का उल्लेख है, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या यह लोक और परलोक को सुख देने वाली है, और पराविद्या मोक्ष का सुख देने वाली है। हमारे यहां जो है विद्या की सीमा नहीं है कि केवल ऐहिक भोग ही दे, ये नहीं है। आजकल की जो आधुनिक विद्या है उसका तो उद्देश्य ही मात्र मृत्यु से पूर्व क्षण तक वो लाभ दे, बस मृत्यु के अनंतर। आधुनिक विद्या में कोई विचार नहीं है, सारे संसार में आजकल आधुनिक विद्या का प्रचलन इतना बढ़ गया कि हमारा भारतवर्ष भी इस आधुनिकता की आंधी में, आंधी की चपेट में आ गया है। और हालत यह है कि हम सनातन धर्मावलंबी होते हुए भी हमारा जो धर्म है वो सनातन है, अनादि होते हुए भी हमने इसके गौरव सम्मान को दरकिनार करके जो आधुनिकता है उसको अपना लिया, और केवल 100 या 1000 में नहीं, लाख में 99,999 व्यक्ति को पूछो तो उसका उद्देश्य केवल यही ही होगा, वो कहते हैं। इसलिए वो पढ़ता भी है तो वो उसी को ध्यान में रख करके, फल को ध्यान में रख करके ही वो पढ़ता है, जबकि हमारे यहां फल को गौण कहा है, कर्तव्य को मुख्य कहा है। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य को प्राधान्य दे, फल को नहीं। फल को ध्यान में रखकर के जो भी कोई कार्य करता है तो उसकी हमारे यहां शास्त्र में और आचार्यों ने बड़ी निंदा की है कि देखो ये तो फल को ध्यान में रखकर के सब कार्य कर रहा है। और जो व्यक्ति फल को ध्यान में रखकर के जो कार्य करता है वो धर्म को महत्व नहीं देता है, वो फल को ही महत्व देता है, और वो ही सोचता है कि ये फल किससे मिले, क्या करने से मिले, धर्माचरण से मिले या अधर्माचरण से मिले। तो कहेंगे धर्माचरण से तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, अधर्माचरण से तुरंत ही ये फल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो अधर्म का चयन कर लेता है। इसलिए सुखी भी नहीं होगा और दुर्गति का भागी होगा। इसलिए होना मनुष्य को ये चाहिए कि वो कर्तव्य को महत्व दे कि मेरा क्या कर्तव्य है, धर्म के अनुसार मेरे को क्या करना चाहिए, फल चाहे कुछ भी हो। भगवान ने गीता में इससे पूर्व दूसरे अध्याय में कहा कृपणा फल हेतवः, फल को ध्यान में रख करके जो कर्म करता है उसको भगवान ने कृपण कहा। और कृपण शब्द की व्याख्या हमारे भाष्यकारों ने की, यो स्वल्पाम अल्पाम अपि स्वक्षतिम न क्षमति स कृपणः। भगवान भाष्यकार ने कृपण शब्द का ये अर्थ किया कि जो व्यक्ति अपनी थोड़ी सी भी क्षति को यानी नुकसान को जो सह नहीं सकता है उसको कृपण कहते हैं। यानी जैव से एक चवन्नी भी यदि कम हो जाए तो दुखी दुखी हो जाता है। स्वक्षतिम न क्षमते उसको कृपण कहते हैं। इसलिए सीधी भाषा में इसको मक्खी चूस कहते हैं। और हमारे यहां एक और भी शब्द प्रयोग है कदरिया। छांदोग्य उपनिषद में अश्वपति राजा की कथा है। अश्वपति राजा के राज्य में कहीं एक ऋषि जो है उससे शास्त्र चर्चा करने के लिए आते हैं। तो राजा के मन में ये हुआ कि कहीं ये जो ऋषि है वो मेरे राज्य में या मेरे राज्य के शासन में दोष देख करके कहीं चले न जाए। होता है हम जिसके घर जा रहे यदि हमको लगे कि ये इनका व्यवहार आचरण ठीक नहीं है तो हम फिर दूसरी बार उसके घर में नहीं जाते। तो राजा को लगा कि मेरे राज्य शासन में मेरे व्यवहार में कहीं दोष देख करके ये ऋषि कहीं चले न जाए। राजा चाहते हैं कि ये सब मेरे राज्य में रहे और मैं इसका संग करके धर्म लाभ प्राप्त कर सकूं। इसलिए राजा ने आगत ऋषि के सामने सफाई देना शुरू किया और कहा कि नमेस्तेनो जनपदे न मद्यपो न कदर्यो न स्वेरी स्वेरिणी कुतः का। आगत ऋषियों को कहा कि भगवान नमेस्तेनो जनपदे मेरे राज्य में कोई स्तेन नहीं है, कोई चोर नहीं है। मैंने अपने राज्य की शासन धुरा इस तरह से संभाली है कि मेरे राज्य में कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे दंड व्यवस्था मैंने कर रखी है कि चोरी करने वाला 100 बार सोचेगा कि मैं चोरी तो करता हूं, यदि पकड़ा गया तो इस चोरी से होने वाले लाभ से कई गुना नुकसान या दंड सहन कर सकना पड़ता है। इसलिए कोई चोरी नहीं करता, इसलिए स्तेनो न। और आगे कहा न मद्यपो, मेरे राज्य में कोई मद्यपान करने वाला नहीं है। कहते हैं मद्यपान करने वाला हो तभी तो मदिरा का निर्माण हो, मदिरा कोई बनाए। मद्यपान करने वाला ही मेरे राज्य में कोई नहीं है। और कहा न कदर्यो, भगवान मेरे राज्य में कोई कदर्य व्यक्ति नहीं है। जिसके लिए मैं प्रसंग सुना रहा हूं, कदर्य कहते हैं भगवान भाष्यकार ने कदर्य शब्द का अर्थ किया वहां पर सती विभवे अदाता, यानी कि वैभव होने पर भी सामर्थ्य होने पर भी जो किसी को फूटी कौड़ी तक अपने खजाने से न दे उसको कहते हैं कदरिया। यदि हमारे यहां शास्त्र में कहा कि आवश्यकता से अधिक यदि अन्न धन और वस्त्र हमारे पास है तो उसके हम मालिक नहीं है, केवल रक्षक है। और वो सबके लिए होता है, अन्न धन और वस्त्र के अधिकारी मनुष्य देहधारी मात्र सब है। सबको भोजन मिलना चाहिए, सबको वस्त्र मिलने चाहिए, सबको आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने के लिए धन मिलना चाहिए। ये राज्य के राजा की ये कर्तव्यता है, राजा का ये कर्तव्य बनता है कि जो है अपने राज्य में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं उनको अन्न धन और वस्त्र जो है मूलभूत जरूरियात जो है आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जवाबदारी राजा की होती है, जो आजकल नहीं दिखता है। इसलिए मेरे राज्य में कोई कदर या नहीं है, वैभव होते हुए भी अदाता नहीं है और न स्वैरी स्वैरिणी को तह स्वैरी नहीं है, जार पुरुष नहीं है, तो स्वैरिणी स्त्री तो कहां से हो सकती है। तो ये प्रसंग है, इसमें एक कदर्य शब्द आया इसलिए आपको सुनाया। कदर्य का अर्थ है वैभव होने पर भी कुछ न दे सके, उसको सज्जनों कृपण कहते हैं। और कृपण का अर्थ बताया कि जो फल को ध्यान में रख करके जो कर्मानुष्ठान करता है उसको कृपण कहा है भगवान ने। इसलिए मनुष्य को कर्तव्य को महत्व देना चाहिए, किंतु आज जो है धन को महत्व दिया जा रहा है, विद्या को नहीं। इसलिए ये इन दोनों के बीच में मनुष्य आज भी भ्रांत रहता है कि विद्या को महत्व दे या धन को महत्व दे। इसलिए धन को महत्व देने वाले सर्वाधिक मनुष्य मिल जाएंगे और विद्या को महत्व देने वाले कम। और विद्या से अभिप्राय है जो आजकल की आधुनिक विद्या, मैं नहीं कह रहा हूं, और यहां धीमान का अर्थ हो आधुनिक विद्या से संपन्न व्यक्ति भी नहीं है। धीमान का अर्थ है जो हमारी भारतीय विद्या से जो संपन्न है। और अभी मैंने जैसे अपरावरपरा की जो बात की तो उसमें अपरा विद्या का अर्थ भी जो इहलोक और परलोक में सुख का जो कारण है उसको अपरा विद्या कहा है। इहलोक के लिए और परलोक के लिए जो साधन बताती है वो अपरा विद्या है। और आधुनिक विद्या तो इहलोक के सुख की भी गारंटी नहीं दे सकती है, परलोक की तो बात दूर। इसलिए हमारी जो भारतीय विद्या है उसका हाल आज ऐसा है कि हम भूल ही गए कि हमारी भारतीय शिक्षा क्या है। जैसे कहा था कि हमारे गुरुकुल में 14 विद्या का अध्ययन करवाया जाता था, 14 मुख्य विद्या और 4 उपविद्या मिलकर के 18 विद्या का जब कोई विद्यार्थी अध्ययन कर लेता था तो उसको स्नातक कहा जाता था। और जो व्यक्ति ये मन में रख करके बैठा हो कि हमारी जो भारतीय विद्या में कोई साइंस नहीं था या कोई आधुनिक आविष्कार नहीं थे, ऐसा नहीं है। आप अध्ययन करो तो पता चले कि आजकल जितने भी आविष्कार हो रहे और नहीं हुए उन सबका आधार हमारे धर्मशास्त्र में, वेद शास्त्र में है, किंतु हम ढूंढते कहां। हम तो हर चीज को अंग्रेजी चश्मे से देखते। अंग्रेज जब तक ठप्पा नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको प्रमाण नहीं मानते। यदि यही वेद जो कोई वैदेशिक ले जाए उसमें रिसर्च करे और उससे जो है नया नया आविष्कार करे, उसकी महत्ता को बढ़ाए, तो फिर भारत में देखिए सब लोग वेद अध्ययन करने लगेंगे। हालत ये है हमारी। इसलिए विद्या को महत्व नहीं दे रहे, इसलिए फिर ऐसे बुद्धिमान पुत्र भी नहीं हो रहे। और भगवान ने यहां पर यह कहा कि धीमताम योगिनाम कुले भवति, उसके कुल में ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जो जन्म से ही फिर विरक्त होकर के सारे संसार का कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे योगी के वहां जन्म हुआ उसका, वो श्रीमान नहीं है, धन से वो दरिद्र है। सभी आचार्यों ने योगी शब्द का अर्थ दरिद्र ब्राह्मण कहा, तो दरिद्र है किंतु धन से नहीं, अविद्या से नहीं, धन से दरिद्र है। धन नहीं है किंतु उसके पास विद्या है, अपार विद्या है। इसलिए कहा धीमताम का, और शुचि नाम विशेषण पीछे से ले आइए तो पवित्राचरण भी है, धर्माचरण भी है और विद्यावान भी है। उसके घर में वो जो श्रद्धा और वैराग्य आदि कल्याणकारी गुण की अधिकता के कारण जिसका शरीर पूर्व जन्म में छूट गया था, ऐसे योग भ्रष्ट का जन्म होगा। और उत्तरार्ध में अब भगवान श्री कृष्ण इन दोनों प्रकार के जन्म में कंपेयर कर रहे हैं कि एक तो योग भ्रष्ट का जन्म हुआ श्रीमान के घर में भोग में स्पृहा के कारण, और दूसरे का जन्म बताया धीमान योगी के घर में भोग वासना के विरह के कारण। तो इन दोनों में भगवान ने ये जो दूसरा जन्म बताया धीमान योगी के घर में भोग वासना से विरह योग भ्रष्ट का जन्म भगवान ने दुर्लभ तरम बताया। देखो एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, ईदृशम जन्म, इस प्रकार का ये जो जन्म है शुचि दरिद्र ब्राह्मण और ब्रह्म विद्या से संपन्न के कुल में जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ तरम कहा, तरप प्रत्यय लगाया। इससे आचार्यों ने ये भी कहा कि जो श्रीमान के घर में वो जन्म दुर्लभ है और ये धीमान योगी के घर में दुर्लभ तरम, तीन कोटि होती है, दुर्लभ, दुर्लभ तमम और दुर्लभ तरम। उसमें दुर्लभ तरम जो है मुख्य कोटि है। हाँ, अब वो एक कोटि है, पहले तो दुर्लभ हो गया सामान्य और दुर्लभ तमम हो गया मध्यम, और दुर्लभ तर हो गया जो है वो ऑल सबसे श्रेष्ठ, इससे और कोई फिर कोटि नहीं होती है। तो ये दुर्लभ तरम जन्म कहा भगवान ने, कहा कि दुर्लभ से भी दुर्लभ, दुर्लभाद अपि दुर्लभम, ये लोक में यदिदृशम जन्म, इस प्रकार का जन्म। क्यों? इसलिए कि इस प्रकार का जन्म जब होता है तो वो बाल्यावस्था से ही वो जो है सर्व कर्म का संन्यास करके ब्रह्म विद्या के लिए वो प्रयत्न करना शुरू कर देता है। और जो पौर्व देहिकम जो बुद्धि संयोग है उसको तुरंत हो जाता है, इसलिए दुर्लभतर बताया। पौर्वदेहिक जो बुद्धि संयोग यानी कि पूर्व जन्म में उसकी साधना जहां से छूटी थी, फिर इस जन्म में वो बाल्यावस्था से ही वो उससे आगे की जो है साधना शुरू कर देता है। जैसे सुखदेव जी का जन्म आप ले लीजिए, प्रहलाद जी को ले लीजिए, सुखदेव जी जन्म से ही विरक्त होकर के यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्य द्वे पायनो विरह कातर आजुहावक। देखिए उनकी तो स्थिति व्यास जी की अपेक्षा और ज्यादा श्रेष्ठ है। व्यास जी तो पुत्र की कामना से जो है ग्रस्त थे, इसलिए पुत्र पुत्र करते हुए उसके पीछे दौड़े, किंतु सुखदेव जी देख लीजिए उसको कोई पिता के प्रति कोई ममता नहीं है कि ये मेरे पिता है। वो तो जन्म से ही विरक्त भाव धारण करके वो निकल गए, उसमें कोई संसार के प्रति मोह ममता नहीं थी, क्योंकि वो जो है श्रद्धा वैराग्य अति तीव्र कल्याणकारी गुण से संपन्न थे, किंतु कोई अल्पायु के कारण वो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाए और बस थोड़ा ही बाधा प्रतिबंध रह गया केवल जन्म मात्र का, तो वो जो है उसका अगला जन्म हुआ उसका, और जन्म होते ही वो फिर विरक्त भाव से वो निकल गए। वामदेवादि को भी ले लीजिए, उसको तो गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। और प्रहलाद जी को देख लीजिए, उसको तो गर्भावस्था में ही इन सारे संस्कार से वो संस्कृत हो गए थे, इसलिए जब वो असुर बालकों को पढ़ा रहे थे, देखिए गए थे पढ़ने, हिरण्यकश्यपु ने उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था, किंतु वहां वो क्लास लेने लग गए, सभी असुर बालकों को बिठा करने कह दिए, कहने लगे कि कौमारम ह्याचरेत प्राज्ञः, कुमार अवस्था में ही व्यक्ति को जो है ये परलोक के लिए कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। और ऐसी दिव्य और दुर्लभ बातें कहने लगे असुर बालक जो है उसके साथी थे। असुर पुत्रों ने कहा कि भाई प्रहलाद तू तो हमारा साथी है, हम साथ में ये गुरुकुल में अध्ययन कर रहे और जो है ये हमारे गुरुजी सबको साथ में पढ़ा रहे, हम समवयस्क है, तो ये बातें तुम कहां से सिखलाया कहते। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि जब मैं गर्भ में था तब मेरी माता जो कयाधु है और मेरे पिता जब जो है तपस्या करने गए तो पीछे से मौका देख करके इंद्र ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। अपहरण करके इंद्र जब मेरी माता को स्वर्ग में ले जा रहे थे उस समय मैं गर्भ में था, तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी को ये पता था कि इसके गर्भ में भगवान का जो महान भक्त पल रहा है, तो नारद जी ने इंद्र से कयाधु को छुड़वा करके अपने आश्रम में ले आए कयाधु को, और कयाधु को अपने आश्रम में रखा और रोज नारद जी जो है उनको पुराण के सब के उपनिषदों की कथा सुनाने लगे। प्रहलाद जी कहने लगे कि मेरी माता तो स्त्री भाव के कारण जो है उसको धारण नहीं कर सकी, किंतु मैंने गर्भ में ये सारी बातें सुन ली और वो संस्कार जो है मेरे अंदर रहा। तो ये पौर्व देहिक जो है बुद्धि का संयोग है, और भगवान इसके बारे में ये दुर्लभ दुर्लभ तरम जो है ये योगियों के घर में जो बताया उसका कारण है दुर्लभत्व क्यों है तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। भगवान की कृपा से उसका विचार फिर आगे करेंगे। ओम।